संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। यह आत्मा अनादिकाल से इसलिए दुखी है क्योंकि जिन संयोगों के बीच में ये रह रहा है, जिन पर्यायों में ये विद्यमान है, उनको निरंतर नाश होते देखता है और इसने उनमें अपनापन स्थापित कर लिया है, इसलिए उनके नाश से ऐसा लगता है जैसे कि ऐसे मेरा ही नाश हो गया और इसकी वजह से ये अनंत दुखी होता है। और जैसे कि आदमी यदि सर्वनाश उपस्थित हो जाए तो हर कीमत पर उससे बचने का उपाय करता है, ऐसे ही इन पर्यायों के परिवर्तन को रोकने के लिए, संयोगों को बिखरने से रोकने के लिए ये अपनी बुद्धि और विवेक से हर संभव प्रयत्न करता है। लेकिन वो प्रयत्न रंच मात्र भी सफल नहीं होता क्योंकि प्रकृति का ये स्वभाव है, वस्तु का ये स्वभाव है कि वो परिवर्तनशील है और उस स्वभाव को दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। स्वभाव ही उसे कहते हैं जो बदला ना जा सके। अनित्य भावना और असरण भावना में इस बार इस प्रकार के चिंतन का विकास किया जाता है कि जिसमें इससे ये कहा जाता है कि भाई ये परिवर्तन है, ये वस्तु का स्वभाव है, इसे बदलने की चेष्टा मत करो। कल एक बात कही थी कि भाई दो उपाय हैं, या तो ये वस्तु जैसी है जो उसमें परिवर्तन हो रहा है, या तो उसमें परिवर्तन रुक जाए तो हम सुखी हो जाएं, और या हमारी ये समझ में आ जाए कि ये तो होगा, किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं है, इसमें मुझे आकुल व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पहला उपाय है वो तो उपाय ही नहीं है क्योंकि वो संभव ही नहीं है। वह एक दूसरा उपाय ही शेष बचता है कि जिससे हम इस बात को विचार करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस अनित्यता से और असरणता से तुम घबरा रहा है कि जो भी संयोग है, पर्याय है, ये विघटित होगी होगी और होगी अपने स्वसमय में, और तू इसके विघटन से दुखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि तू इसके विघटन से दुखी क्यों है, क्योंकि तू ये है ही नहीं, ये तेरा है ही नहीं। सवाल तो ये है कि ये तू होती तो उसके बारे में हम सोचते कि क्या करें और क्या नहीं करें। इस जगत में कुछ भी हो उससे तेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो एक तो उन संयोगों से भिन्न जो असंयोगी तत्व है वो तू है, और परिवर्तनशील क्षणभंगुर तो ये पर्याय हैं, संयोग हैं, और तेरा वो जो स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव है, जो असंयोगी तत्व है, वो तो क्षणभंगुर नहीं है ना। तो तुझे जो चाहिए कि मैं नित्य रहूं, तो वो तो है कायम। ये इसकी समझ में आ जाए तो इसकी इच्छा के अनुरूप ही इसे सुख की प्राप्ति हो जाए कि तू ये चाहता है कि मैं नित्य रहूं, कभी मेरा नाश नहीं हो, और तेरा नाश कभी नहीं होता है, ये बात पक्की और सच्ची है। जिसका नाश होता है वो मेरा है ही नहीं। किसी ने किसी को समाचार दिया कि तेरी पत्नी तेरे को छोड़ के चली गई है और किसी दूसरे आदमी से उसने शादी कर ली है। ये सब घटना मेरे आंख के सामने बनी हुई है, अभी भी अमेरिका की घटना है। तो जब उस आदमी को ये खबर दी गई तो उसने कहा जो मेरे को छोड़ के चली गई वो मेरी थी ही नहीं। क्या अब उसे मनाने जाना और समझाने जाने का सवाल क्या खड़ा होता है। मेरी होती तो जाती क्यों। इसलिए जो संयोग गया है वो तेरा है ही नहीं, वो तू है ही नहीं, तो उसमें दुख की बात क्या है, ख्याल में है ना। यानी उपाय तो ये है। तो पहली बात तो ये कही जा रही है जो कल्प ने एक तर्क से सिद्ध किया था कि तेरे को ये बहुत इच्छा हो रही है कि ये संयोग पलटे नहीं और ये पर्याय पलटे नहीं, तो एक दफे ये कल्पना करके तो देख कि आज जो ये पलटती हैं ये अच्छी स्थिति है कि जिस दिन ये पलटना बंद हो जाएंगी वो स्थिति अच्छी होगी। कदाचित तेरी भावना के अनुसार वो बात सफल हो गई तो क्या होगा। तो कल बहुत उदाहरण देके आपको समझाया था कि यदि तू कभी नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा इस शरीर सहित, तो जो सबसे बड़ा तेरा दुख है कि पुत्र पौत्रों को अपने आंखों के सामने मरते देखना, वो दुख देखना तुझे अनिवार्य हो जाएगा अनेक पीढ़ियों का। ये बात तो कल कही थी। और एक दिन तो ये चिड़ियाघर का जानवर बन के रह जाएगा। इस पर वो कहता है कि अकेला मेरी अमरता की बात थोड़ी है, मैं तो सपरिवार अमर होऊंगा। क्या बाल बच्चे भी अमर, पत्नी भी अमर, रिश्तेदार भी अमर, क्या अकेली एक की बात थोड़ी है। फिर तो मुझे अपने बच्चों को अपने कंधे पर नहीं ले जाना पड़ेगा। तो उससे कहते हैं भाई साहब ये भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि न तुम नहीं मरोगे, बच्चे नहीं मरेंगे, तुम्हारे परिवार का कोई नहीं मरेगा। तो आज विश्व के सामने एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है, जनसंख्या वृद्धि की। और उसका एक कारण ये माना जाता है वैज्ञानिकों की दृष्टि से कि पहले मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, जन्म दर जितनी थी उतनी ही मृत्यु दर थी, इसलिए बैलेंस बना रहता था। लेकिन इस विज्ञान के विकास ने मृत्यु दर को कम कर दिया है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब हमारी हिंदुस्तान की उम्र एवरेज 27 वर्ष थी और आज 67 वर्ष हो गई है, हमने इतनी तरक्की कर ली है। अब जब आदमी मरेंगे नहीं इतनी हुई, तो ये समस्या किससे क्या खड़ी हो गई कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हम 30 करोड़ थे और आज हम 1 अरब से ज़्यादा हो गए हैं। तो यदि मरना बंद हो जाएगा, जैसा कि तुम कहता है बिल्कुल ही, अभी तो थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा लेट हुआ है मरना, अभी पूरा बंद तो नहीं हुआ ना। जो 27 वर्ष की उम्र में मरता था वो 67 वर्ष की उम्र में मरता है, इतनी बात तो हुई है ना। तब तो इतनी समस्या खड़ी हो गई। और जब बिल्कुल ही बंद हो जाएगा तब क्या होगा, इसकी कल्पना तेरे को है? तो उपाय क्या होता है फिर कि यदि मृत्यु बंद हो जाए और जगत का बैलेंस कायम रखना है तो जन्म बंद करो। यही तो होता है ना। हमने न केवल मृत्यु नहीं रोकी, जितनी मृत्यु रोकी उतने हमें जन्म भी रोकना पड़ते हैं। हम रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जगत का जो सोच है, जो इंतजाम है, वो तो ऐसा ही है ना। और इसका क्या अर्थ है कि इन बुड्ढों को तो मरने नहीं दो और नई संतानों को पैदा नहीं होने दो। इस सोच का क्या परिणाम होगा आप समझते हैं? ऐसे समझ में नहीं आएगी ये बात। हम यदि इस जॉम में कि जनसंख्या पर हमने कंट्रोल नहीं किया तेजी से, तो एक विस्फोट हो जाएगा। इस डर के मारे हम ऐसा नक्की कर दें कि 50 साल तक उत्पादन बिल्कुल बंद, कारखाना बंद, कर सकते हैं? जब हमने प्रतिबंध बांध दिया कि कोई एक 3 से ज्यादा पैदा नहीं कर रहा है, फिर कह दिया 2 से ज्यादा पैदा नहीं कर रहे, हम 2 और हमारे 2, अब हम 2 और हम दोनों के 1 पे आ गए हैं, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे आए हैं, तो ये 0 पे भी पहुंच सकते हैं कि 50 वर्ष तक स्टॉप नो प्रोडक्शन, तो क्या होगा? आप समझते हैं कि 50 बरस बाद इस दुनिया में कोई बालक दिखाई नहीं देगा, जवान दिखाई नहीं देंगे, सब 50 बरस की उम्र के बाद के सब रिटायर्ड लोग ही दिखाई देंगे। ऐसा देश आपको पसंद है? वो घर पसंद है जिस घर में किलकारी ना हो, बच्चे ना खेलते हो? इन स्कूलों का क्या होगा? कॉलेज की पढ़ाई पढ़े में पढ़ेगा कौन? कहने नहीं, जब कंट्रोल एक दफे हो जाएगा ना तो हम फिर उत्पादन शुरू कर देंगे। लेकिन भाई साहब, फिर उत्पादन शुरू करना संभव ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब जवान जोड़े ही नहीं होंगे तो उत्पादन होगा कैसे? ये तो सर्व विनाश का रास्ता हुआ ना, कि वहां मृत्यु रोकना और यहां जन्म रोकना। किसी अपेक्षा तक सही होगा, उसकी मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक जगह जाकर के तो मर्यादा को रोकना ही पड़ेगा ना। क्यों? अभी हम 67 वर्ष के हो गए एवरेज में, फिर कल 80 हो जाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे, फिर 150 वर्ष के हो जाएंगे। क्यों एवरेज? तो जितनी जितनी हमारी एवरेज आयु बढ़ेगी उतनी उतनी, अभी हम 2 के 1 पे तो आ गए हैं, यहां कम, अब और कहां कम करने की गुंजाइश ही नहीं है। क्या करोगे बोलिए? समझ गए आप? लंबी उम्र का, इन संयोगों के वियोग नहीं होने का क्या अर्थ होगा? ये समझ लीजिए कि दुनिया का विकास, ये दुनिया का ये परिवर्तन एकदम एक थमके रह जाएगी, और हमें अनंत काल तक यही चेहरे एक दूसरे के देखते रहने पड़ेंगे। क्यों? अभी हमारे भारतवर्ष में संस्कारों की वजह से तलाक को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, तो बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, कहते अमेरिका में कितनी सुविधा है, बढ़िया, चाहे जब तलाक दे दो। क्यों? यदि तुम अमर हो गए सपत्नी सहित, तो अनंत काल तक तुम्हें तलाक नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया भाई साहब। क्योंकि यही संयोग, ये जो संयोग वर्तमान है, ये इनका वियोग नहीं होगा तो दूसरे नए संयोग कैसे मिलेंगे? क्या वो लोक की व्यवस्था ठीक होगी? क्या उसमें आप सुख और शांति की प्राप्ति कर सकेंगे? क्या ये रास्ता सही है? तो यही रास्ता ठीक है ना। कौन सा? कि जो वस्तु की व्यवस्था में है, कि पुरानी पड़ती हुई चीजें समाप्त होती जाएं, विघटित होती जाएं, और नई नई चीजें उत्पन्न होती जाएं। ये ऑन द होल पूरे देश की दृष्टि से भी बात ठीक है, समाज की दृष्टि से भी ठीक है, और हम व्यक्ति की दृष्टि से विचार करें तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि पुराना शरीर बदल के नया शरीर आ जाए तो क्या दिक्कत की बात है। 2 बातें हैं। ये मेरा कुर्ता है और इसमें 10 थेगरे लगे, थेगरे तो समझते हैं कि नहीं समझते हैं, पेबंद ऐसे लगे हो यहां 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 यहां, तो मेरी किस बात की निशानी है? कि मेरे पास दूसरा कोई कुर्ता नहीं है जिसे मैं पहन लूं, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूं। मैं समझता हूं इसे मैंने छोड़ दिया तो मुझे नंगे बदन रहना पड़ेगा, तभी तो थेगरे लगा लगा करके मैं इस कुर्ते को पहनता हूं। जिसके पास दूसरे कुर्ते का इंतजाम हो, वो व्यक्ति कुर्ते को थेगरे लगाकर कभी नहीं पहनेगा, पैबंद लगाकर कभी नहीं पहनेगा। इस शरीर का ये क्या, नाक टूट गई तो नाक प्लास्टिक की लगा ली, दांत टूट गए तो दांत दूसरे पर लगा लिए, ये सब क्या है? इस शरीर पर थेगरे ही लगाना तो है ना, किडनी खराब होगी तो उसे बदल ली, ये सब क्या है? अरे कार हमारी 4-5 साल में खराब हो जाती तो हम बदल के दूसरी ले लेते हैं, क्यों? उसे बेच देते हैं, नहीं बेचते हैं तो वैसे ही फेंक देते हैं, और इस देह को थेगरे लगा लगा के चलाते हैं। ऐसा कौन लोग कर सकते हैं? जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि एक कुर्ता मैं इसलिए नहीं फेंक सकता क्योंकि मुझे इससे बढ़िया कुर्ता मिलने की संभावना नहीं है। तो जिन्होंने जीवन में ना धर्म किया है और ना पुण्य किया है, ऐसे लोग ही इस देह को थेगड़े लगाकर चलाने का काम करेंगे। क्या मतलब? धर्म किया होता तो ये देह छूटती, फिर कोई दूसरी देह में किसी मां के पेट में जाना ही नहीं पड़ता और अनंत काल के लिए देह से रहित होकर विदेह हो जाता, अनंत सुखी परमात्मा बन जाता, सिद्ध भगवान बन जाता। जिसको ये सिद्ध भगवान बनने की जिनके शक्ति है अथवा जो प्रकट है वर्तमान में हो सकते हैं, वे क्यों इस देह में बैठे रहना चाहेंगे? बोलो। और पुण्य यदि किया हो हमारे अपने जीवन में तो ये देह छूटेगी तो इससे बढ़िया देह मिलेगी। क्यों? देवगति में चले गए तो कहना ही क्या है, वैक्रियक शरीर मिलेगा। क्यों? कितना मजबूत होगा, सागरों पर्यंत चलेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। और जाकर द्वारा मनुष्य ही हो गए तो कम से कम ये 60-70 वर्ष पुराना सड़ा गला शरीर, 50 बीमारियों घर घर गए, एकदम नया ताजा फ्रेश शरीर मिल जाएगा। क्यों? बोलिए। तो वही लोग जिनको ये है कि यदि मैं ये छोड़ूंगा तो इससे अच्छी चीज मिलेगी, वो कभी इससे चिपके रहना नहीं चाहेंगे। इन संयोगों से वो ही चिपके रहना चाहते हैं, क्योंकि समझते ना तो हमने जिंदगी में धर्म किया है ना हमने कोई पुण्य किया है, तो उन्हें ये डर लगता है कि यदि ये मनुष्य देह छूट गई तो न मालूम किस सूकड़ी कुकड़ी के पेट में जाएंगे और कुत्ते बिल्ली बनकर कहां कहां चार गति और 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इस डर के मारे थेगरे लगा लगा कर देह को पहनते हैं। ये इसकी दरिद्रता की निशानी है। ये पुराने थेगड़े वाले पैबंद वाले कपड़े जैसे दरिद्रता की निशानी है ना, ऐसे ही इस देह के, भाई किडनी बदलते हो देह ही बदल लो ना। क्यों? हमारा टीवी खराब हो जाए, बार बार हम सुधरवाने के लिए जाएं, वो कहता बाबूजी जितने पैसे आपने इसमें खर्च कर दिए, ये नया टीवी ले जाओ ना, ये पुराना दे जाओ, आधी कीमत में नया ले जाओ। आजकल ऐसा चलने लगी ना योजनाएं, तो हम फटाफट नया ले आते कि नहीं ले आते हैं, बोलिए। तो यहां भी तो आपको नई देह मिल रही है ना। तो ये जो संयोग ही चाहिए, अच्छे चाहिए, तो भी किसी एक संयोग से वो संयोग अनित्य है इसमें दुख मनाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात जो ये कही जाती है कि कोई बचा नहीं पाएगा, असुरन है, कोई बचा नहीं पाएगा, आता ना, दलबल देवी देवता और मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। क्यों? तो किसको नहीं बचा पाएगा, कौन है असरण? तो हमको ऐसा लगता है कि हम असरण हैं, हमें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन तुम तो मरते ही नहीं, तुम तो अमर हो। ये बात तो संयोगों की चल रही है, बात तो पर्यायों की चल रही है। असरण कौन है? पर्याय हैं, ये संयोग हैं, स्त्री पुत्र मकान का साथ, ये असरण है। ये इनका वियोग नक्की है, ये देह का वियोग नक्की है। ये देह तो संयोग है ना, तो असरण कौन है? हम क्या समझते हम असरण हैं, जबकि उसमें ये कहा गया है कि ये संयोग असरण है। और दूसरी बात है कि असरण शब्द का भी हम सही अर्थ नहीं समझते हैं। हम तो ये समझते हैं कि हम किसी की शरण में गए, शरण मांगी और उसने हमें शरण नहीं दी, हमारी रक्षा की गारंटी नहीं ली, तो हम असरण हो गए। हम सबके पास गए हमें बचा लो, हमें बचा लो, कोई ने नहीं कहा कि हम तुम्हें बचाएंगे, तो हम असरण हो गए। असरण का सही अर्थ ये है कि हमें दूसरे के शरण की जरूरत नहीं है। कोई किसी की शरण में रहता है और हम असरण हैं, ख्याल में है ना। हमें किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसकी शरण में जाएं, हम तो स्वयं भगवान हैं, है ना। असरण माने जिसे किसी दूसरे की शरण की आवश्यकता ना हो, अथवा पर्याय भी असरण है, संयोग भी असरण है। क्या मतलब? कि पर्याय का स्वभाव संयोग का स्वभाव बदलना है, और उसे स्वयं के बदलने के लिए किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है असरण। शांतिलाल जी, क्या मुझे मरने के लिए किसी शेर के मुख में जाने की जरूरत नहीं है, अग्नि में कूदने की जरूरत नहीं है, कुएं में कूद के मरने की जरूरत नहीं है? क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी मरण नाम की जो पर्याय है वो असरण है, वो स्वसमय में बिल्कुल सहज भाव से हो जाएगी, उसे किसी कुएं बावड़ी की बंदूक की गोली की जरूरत ही नहीं है। क्या वो पर्याय को पलटने में किसी दूसरे के शरण की आवश्यकता नहीं है? इसका नाम असरण है। सहयोग की उसे जरूरत नहीं है, और दुनिया की कोई ताकत जब वो समाप्त होगी तो उसे रोक नहीं सकती। इसका अर्थ ये नहीं कि वो तो हाथ पैर जोड़ रही कि मुझे बचा लो बचा लो, और कोई बचा नहीं पाएगा, ये अर्थ नहीं है। कहने का मतलब है उसके काम में दुनिया का कोई पदार्थ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या मुझे जाना है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, नहीं जाना है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। ख्याल में आया ना? ये असरण का अर्थ है। तुम होते कौन हो बीच में? मैं अपने स्वभाव के अनुसार अपने हिसाब से बदलूंगी। ये जो बाल है ना, क्या सफेद बाल हो गए ना कोमल चंदी, ये असरण है। असरण है माने जब इन्हें काले रहने थे तो कोई दुनिया की ताकत इन्हें सफेद नहीं कर सकी, और जब इन्हें सफेद होना था तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें सफेद होने से रोक नहीं सकी। यानी कितने आजाद हैं। असरण शब्द में से हमने पराधीनता निकाली, जबकि वो स्वाधीनता का अर्थ है। और यदि पराधीनता ही अर्थ में लगता है तो तुम थोड़ी हो असरण, तुम्हारे शत्रु असरण है। ये देह का संयोग असरण है ना, यही का वियोग मरण काय का नाम है। इस देह के वियोग का नाम मरण है ना, कोई आत्मा तो मरता मरता है नहीं, ये आत्मा और देह अलग अलग हो गए, इसी का नाम तो मरण है ना। क्यों? ये देह तो देह का वियोग ये आपके हित में है कि अहित में? बोलो। आप रोजाना भगवान के सामने बोलते हो तनकाराग्रह बनिता बेड़ी परिजान जान राखवारे, ये शरीर जेल है, ये पत्नी बेड़ियां हैं, पैरों में बेड़ी डाल देते ना, और ये परिजन जन रखवारे, ये कुटुंबी लोग रक्षक हैं। रक्षक माने तुम्हारी रक्षा करने वाले नहीं, तुम भाग ना जाओ इसलिए पुलिस ने तुम्हारे को जेल में रखा है, कैदी भाग न जाए। इस रखवाले माने कैद में से तुम भाग न जाओ, इसकी रक्षा करने वाले, तुम्हारी रक्षा करने वाले नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि यदि ये शरीर जेल है, यदि ये पत्नी बेड़ियां हैं, और ये परिजन जन क्यों ये रखवाले हैं तुम्हें कैद में रखे हुए हैं जबरदस्ती, तो बहुत अच्छी बात है ना कि ये असरण है, भाई अनित्य है, ये खुद ही मर जाएंगे और दुनिया की कोई इन्हें बचा नहीं सकेगा। माने मेरे देह बिगड़ जाएगी तो जेल में से छूट गए, मैं तनकाराग्रह से छुट्टी मिल गई है, पत्नी खत्म हो जाएगी कि मैं खत्म हो जाऊंगा तो मेरे पेड़ में से बेड़ियां कट गई, और पुलिस की कस्टडी में से बाहर हो गया। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? असरण तो भाई साहब तुम्हारे शत्रु हैं, तुम नहीं, क्यों चिंता करते हो? ऐसा यदि विचार करे तो असरण भावना में से सुखो शांति की उत्पत्ति हो, आकुलता की उत्पत्ति नहीं हो। ऐसा चिंतन हम करें और सुख शांति प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।